Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Giri Nibham చారుచంద్రవతంసం రత్నకల్పోజ్వలాంగం పరశుమృగవర వీతిహస్తం ప్రసన్నం పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణిర్ వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం నారాయణం పద్మభవం వశిష్ఠం సప్తిం చ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం సుకం గౌడపదం మహంతం గోవింద యోగీంద్రమథాస్య శిష్యం శ్రీ శంకరాచార్యమథాస్య పద్మ పాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం తంతోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మద్గురుం సంతతమానతోస్మి విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేది దివ్యచక్షుసే శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం నమ శివాయ శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం నమ శివాయ శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం నమ శివాయ శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం శివాయ నమ ఓం నమ శివాయ హరాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం నమో హరాయ హరాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం నమో హరాయ హరాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం నమో హరాయ హరాయ నమ ఓం హరాయ నమ ఓం నమో హరాయ భవాయ నమ ఓం భవాయ నమ ఓం భవాయ నమ ఓం నమో భవాయ భవాయ నమ ఓం భవాయ నమ ఓం భవాయ నమ ఓం నమో భవాయ భవాయ నమ ఓం భవాయ నమ ఓం భవాయ నమ ఓం నమో భవాయ భవాయ నమ ఓం భవాయ నమ ఓం భవాయ నమ ఓం ॐ नमो बाबाय बाबाय नम ॐ बाबाय नम ॐ बाबाय नम ॐ नमो बाबाय बाबाय नम ॐ बाबाय नम ॐ नमो बाबाय मृडाय नम ॐ मृडाय नम ॐ मृडाय नम ॐ नमो मृडाय मृडाय नम ॐ मृडाय नम ॐ नमो मृडाय मृडाय नम ॐ मृडाय नम ॐ मृडाय नम ॐ नमो मृडाय मृडाय नम ॐ मृडाय नम ॐ नमो मृडाय शिवाय नम ॐ शिवाय नम ॐ शिवाय नम ॐ नमः शिवाय शिवाय नम ॐ शिवाय नम ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ॐ ॐ ॐ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ ವಿಶ್ವಂ ದರ್ಪಣ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಗರಿ ತುಲ್ಯಂ ನಿಜಾಂತರ್ಗತಂ ಪಶ್ಯನ್ನಾತ್ಮನಿ ಮಾಯಯಾ ಬಹಿರಿವೋ ಭೂತಂ ಯಥಾ ನಿದ್ರಯಾ ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುರುತೇ ಪ್ರಬೋಧ ಸಮಯೇ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇವಾದ್ವಯಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಬೀಜಸ್ಯಾಂತರಿವಾಂಕುರೋ ಜಗದಿದಂ ಪ್ರಾಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಪುನರ್ ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತ ದೇಶ ಕಾಲಕಲನ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕೃತಂ ಮಾಯಾವೀವ ವಿಜೃಂಭಯತ್ಯಪಿ ಮಹಾ ಯೋಗೀವ ಯಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಯಶ್ಚೈವ ಸ್ಫುರಣಂ ಸದಾತ್ಮಕಮಸತ್ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಕಂ ವಾಸತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತತ್ವಮಸೀತಿ ವೇದ ವಚಸಾ ಯೋ ಬೋಧಯತ್ಯಾಶ್ರಿತಾನ್ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಾತ್ ಭವಿನ್ನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿರ್ಭವಾಂಭೋ ನಿಧೌ தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே நானாசித்ரகடோதரஸ்திதமஹ தீபப்ரவாபாஸ்வரம் ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதிகரண த்வாரா பஹிஸ்பந்ததே ஜானாமீதி தமேவ வாந்தமனுபாத் ஏதத்ஸமஸ்தம் ஜகத் தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே தேஹம் ப்ராணமபீந்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச சூன்யம் விதோ ஸ்த்ரீ பாலாந்த ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி ப்ராந்தா வ்ருஷம் வாதினஹ சக்தி விலாச கல்பித மகா வ்யாமோஹ சம்ஹாரிணே தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே ராஹோ க்ரஸ்த திவாகரேந்து சத்ருஷோ மாயா சமாச்சாதனாத் சன்மாத்ர கரணோபசம்ஹரணதோ யோகோத்சுசோப்தமான்ஸ்வாப்ஸமிதி பிரபோதசமயே யஹ ப்ரத்யவிஜ்ஞாயதே தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே பால்யாதிஸ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா சர்வாஸ்வஸ்தாஸ்வபி வ்யாவ்ருத்தாஸ்வனுவர்த்தமானமஹமித்யந்தஸ்புரந்தம் சதா ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே விஸ்வம் பஸ்யதி கார்ய காரணதயா ஸ்வாமி சம்பந்தத்தஹ சிஷ்யாச்சார்யதயா ததைவ பித்ருபுத்ராத்யாத்மனா வேதத்தஹ ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வாயயே ச புருஷோ மாயா பரிப்ராமிதஹ தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே ூரம்பாச்சலோலோம்பரமீமாசோபுமன் இத்தாச்சராச்சராத்மகமிதம் யூர்த்தியஸ்தகம் நியத்கிச்சன விதே விமிருஷதாம் யஸ்மாத் பரஸ்மாத் விபோ தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே சர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீக்ருதமிதம் யஸ்மாதமுஸ்மின்ஸ்தவே தேனாஸ்ய ஸ்ரவணாத் ததார்த்தமனநாத் த்யானாச்ச சங்கீர்த்தனாத் சர்வாத்மத்வமஹாவிபூதிசஹிதம் ஸ்யாதீஸ்வரத்வம் ஸ்வதஹ சித்தே தத் புனரஸ்ததா பரிணதம் சைஸ்வரியம் அப்யாஹதம்.
ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரிய விரச்சித் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திர கா பிரசங்க சல் ரஹா ஹை. இஸ் ஸ்தோத்திர மே ஆஜ் அந்திம் ஸ்தோத்திர யானி தஸ்வா ஸ்லோக் சர்வாத்மத் ஸ்புடீக்ருதமிதம் யஸ்மாதமுஸ்மின்ஸ்தவே தேனாஸ்ய ஸ்ரவணாத் ததார்த்தமனநாத் த்யானாச்ச சங்கீர்த்தனாத் சர்வாத்மத்வமஹாவிபூதிசஹிதம் ஸ்யாதீஸ்வரத்வம் ஸ்வதஃ சித்தே தத் புனரஸ்ததா பரிணதம் சைஸ்வரியம் அவ்யாஹதம்.
குச்ச லோகோ கோ யே கஹா ஜாயே கி தும் வேதாந்த ஸ்ரவண கியா கரோ, சத்சங்க கியா கரோ, வேதாந்த ஸ்ரவண கரோ. தோ பஹலா பிரஷ்ன ஹோதா ஹே உன்கா, तो इससे क्या फायदा होगा। इससे पहले ये बताया गया था आठवें श्लोक में, स्वप्ने जागृति वा ये स पुरुषो माया परिभ्रामितः। भगवान शिव की जो शक्ति रूपा है, अनिर्वचनीय माया, उस अनिर्वचनीय माया से भ्रमित हुए हुए जीव एक अभिन्न शिव तत्व परमात्मा तत्व में अनेक प्रकार की कल्पना कर बैठते हैं और ये सारा जगत इसी कल्पना में टिका हुआ है। किस प्रकार की कल्पना करते हैं? वह कार्य कारण भाव की कल्पना करते हैं। एक अद्वितीय ब्रह्म में कार्य कारण भाव संभव ही नहीं है, फिर भी कार्य कारण भाव का कल्पना करते हैं। ये माया कल्पित, माया भ्रामित, माया के द्वारा भ्रमित हुए हुए व्यक्ति कार्य कारण भाव की कल्पना करते हैं। उसी प्रकार के स्वस्वामी संबंधतः इस माया के चलते ही स्वामी और सेवक भाव की कल्पना करते हैं। परमात्मा स्वामी है और हम उनके सेवक हैं। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, हम अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान हैं। उसी के माया के ही भ्रमित होकर ये भी कल्पना करते हैं। शिष्याचार्य तया गुरु शिष्य भाव की कल्पना करते हैं और उसी के चलते पितृ पुत्रादि भाव, पति पत्नी आदि भाव, एक अद्वितीय ब्रह्म में कौन भोक्ता और कौन भोग्य, कौन कार्य और कौन कारण, एक अद्वितीय ब्रह्म में कौन जनक और कौन जन्य। वास्तव में ऐसे होते हुए भी माया परिभ्रामिता, माया के द्वारा भ्रमित होने पर इस प्रकार की सारी कल्पना कर लिया करते हैं। और ये भेद कल्पना कब तक है? इस भेद कल्पना का कारण क्या है और ये भेद कल्पना कब तक है, इसके लिए बता रहे हैं कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक ये भेद का नाश नहीं होगा, भेद का व्यावर्त नहीं होगा, ये भेद बना रहेगा। इस समस्त भेद का जो मूल कारण है माया, उसका परिहार करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा? तो कल संकेत किया गया था इसके लिए। माया में दो शक्ति हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। अद्वितीय ब्रह्म तत्व के भाव को आवृत करने के चलते उसी एक परमात्मा में विक्षेप शक्ति से द्वैत भाव को खड़ा कर दिया है, गुरु शिष्य भाव को खड़ा कर दिया है, कार्य कारण भाव को खड़ा कर दिया है, स्वामी सेवक भाव को खड़ा कर दिया, पिता पुत्र भाव को खड़ा कर दिया है, पति पत्नी भाव को खड़ा कर दिया है। अद्वितीय में कोई संबंध नहीं है, फिर भी अनेक संबंधों को खड़ा कर दिया है, भोक्ता भोग्य भाव को खड़ा कर दिया है। दो कारणों से ये होता है, एक तो सदअंश को आवृत कर देने से विक्षेप शक्ति में नाशवान परिवर्तन, दृष्ट नष्ट जगत की उत्पत्ति विक्षेप शक्ति से कर देती है। इसी प्रकार से चिद अंश का आवरण कर देने पर जड़ांश जगत की उत्पत्ति होती है, जड़ भाव दिखा देता है। ये माया की विशेषता है, विपरीत भाव को खड़ा कर देना, ये माया का एक खेल है। सदंश को ढककर अनित्य
अशाश्वत नाशवान भाव को खड़ा कर देना, चिदंश को ढककर उसी चिदंश में जड़ भाव को खड़ा कर देना, आनंद अंश को ढककर उस आनंद अंश में ही दुख भाव को खड़ा कर देना, अद्वैत अद्वितीय अंश को ढककर उसी में द्वैत भाव अनेक भेद भाव को खड़ा कर देना। ये दोनों काम माया करती है अकेले, एक अंश को ढके बिना दूसरे अंश को उत्पन्न नहीं कर सकती माया। अधिष्ठान के स्वरूप को ढके बिना अध्यस्त स्वरूप को उत्पन्न नहीं कर सकती है। रस्सी के यथार्थ स्वरूप को ढके बिना सर्प भाव उत्पन्न नहीं कर सकती। सीपी के यथार्थ भाव को स्वरूप को ढके बिना चांदी भाव की उत्पत्ति, चांदी भाव खड़ा नहीं कर सकती है माया। मरुभूमि के यथार्थ स्वरूप को ढके बिना जल भाव को खड़ा करना संभव नहीं है। इसी प्रकार के सच्चिद आनंद अद्वितीय ये चार भाव जो परमात्मा का स्वरूप लक्षण माना जाता है, उन चारों भाव को खड़ा करके माया उसी में ठीक उसके विपरीत चार भाव खड़ा कर देती है। चार भाव को आवृत करके इन्हीं ठीक उसके विपरीत चार भाव को खड़ा कर देना माया का खेल है। तो ये सब माया की निवृत्ति कैसे होगी? तो बोले उसी की उपासना करो, उस परमात्मा की उपासना करो तो उसकी कृपा से माया का यह आवरण हट जाएगा। इसीलिए कठोपनिषद में कहा है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मे दया न बहुना श्रुते न इमे वेशे वृणुते ते न लभ्य कस्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। आदिगुरु शंकराचार्य ने दो प्रकार की व्याख्या की है इस मंत्र की व्याख्या में। कहा है कि जो मुमुक्षु परमात्मा को पारमार्थिक सत्य के रूप में स्वीकार करता है तो वह स्वीकार करने वाला मुमुक्षु उसी रूप में उसको प्राप्त करता है। जिसको जो व्यक्ति परमात्मा को जिस रूप में वर्णन करता है वह व्यक्ति उस परमात्मा को उसी रूप में प्राप्त करता है। एक अर्थ तो ये कर दिया, एमे वे सब वृणुते तेन लभ्य, और दूसरा अर्थ कर दिया है कि परमात्मा जिसको वर्ण करते हैं तो वही परमात्मा के स्वरूप को अनुभव कर पाता है। ये परमात्मा की कृपा पर निर्भर होता है, ईश्वर कृपा पर निर्भर होता है साधक परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। यदि ईश्वर इच्छा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई तो प्राप्त कर लेगा, और नहीं होगी तो प्राप्त नहीं कर लेगा। इसका मतलब पूरी तरह ईश्वर में निर्भर रहना पड़ेगा ये भी बात नहीं, इसका अर्थ बदल दिया है। मुमुक्षु परमात्मा को स्वीकार करेगा, परमात्मा इस रूप में है और मुझे इसी रूप में परमात्मा का अनुभव करना है, वह वर्ण कर लेगा इस रूप में तो अपने भाव के अनुसार वर्णीय तत्व को वो अनुभव करेगा। सगुण साकार का वर्ण करेगा तो सगुण साकार का ही अनुभव करेगा, सगुण निराकार को वर्ण करेगा तो सगुण निराकार को ही अनुभव करेगा, और निर्गुण निराकार का वर्ण करेगा तो वह निर्गुण निराकार का ही अनुभव करेगा। तो यमे वे सब वृणुते न लभ्य कस्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, तनुम स्वरूपम स्वाम विवृणुते। मुमुक्षु अपने ही स्वरूप का अनुभव करता है, या मुमुक्षु परमात्मा के स्वाम स्वरूपम विवृणुते प्राप्त करा देते हैं, अनुभव करा देते हैं। ये कठोपश्रुति है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ गीता में भी कहा है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन मेरी ये त्रिगुणात्मिका जो माया है वह यूं तो दुरत्यया है, मेरे अलावा कोई भी इसको हटा नहीं पाता है, मेरे अलावा कोई इसको हटा नहीं पाता, क्योंकि ये मेरी माया है, जीवों की माया नहीं है। जीवों की माया होती तो जीव हटा लेते, जीवों की माया तो है ही नहीं है तो जीव कैसे हटाएंगे उसको। तो मेरी माया है इसलिए उसको हटाना रखना पूरी तरह मैं सक्षम हूं। मम माया दुरत्यया दुखे न अत्यय तुम सक्य है दुरत्यया, दुरत्यया माया तुम अपने बलबूते पर यदि इसको हटाना चाहो नहीं हटा सकते हो, फिर कौन हटाएगा महाराज? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मेरे शरण में मेरी प्रतिपत्ति जो स्वीकार कर लेता है तब वह मेरी कृपा से वह माया उसको हटा देती है, माने छोड़ देती है। दो बात है, मैं हटा देता हूं या माया खुद छोड़ देती है। माया भी समझती है कि ये किसका व्यक्ति है, समझ गया ना। माया भी ये समझती है, विचार करती है पहले कि ये किसका आदमी है। यदि ये परमात्मा का आदमी है तो माया छोड़ देती है, ये तो अपने मालिक का ही सेवक है। ये व्याख्या कर दो तो वैष्णव लोग बड़े खुश होते हैं, आहा स्वामी जी ने आज क्या सुंदर हमारे सिद्धांत की व्याख्या कर दी है। परमात्मा का जो भक्त है वह माया ये जानती है कि परमात्मा का भक्त है, तो माया कहती है तो हमारे स्वामी का ही सेवक है, दास है, ये तो अपना ही व्यक्ति है, जाने दो इसको। व्यवहार में भी तो यही होता है कि नहीं आप लोगों के, ये तो अपना व्यक्ति है, जवा दो अपना मानस है, आप लोग बोलते ही हो, जवा दो अपना मानस है। दूसरी बात है, माया खुद छोड़ देती है। पहली बात है कि परमात्मा माया से छुड़ा देते हैं, दूसरी बात है माया खुद छोड़ देती है। हाँ, चाहे माया खुद छोड़ दे चाहे परमात्मा छुड़ा देवे, फल तो एक ही प्राप्त होगा ना। तो गीता का भी ये श्लोक है, इसलिए ईश्वर की उपासना करो। किस रूप में ईश्वर उपासना के लिए, यूं तो सभी ईश्वर भाव है, क्योंकि आगे का जो श्लोक है, नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम, शंकराचार्य जी बोलते हैं, जब मैं वास्तव में जगत के पदार्थों के बारे में विचार करने लगता हूं, विमृशताम, अविचार भाव में कुछ भी तुम सिद्ध कर लो, लेकिन विचार के भाव में विचार करने लगता हूं, तब परमात्मा के अलावा दूसरा कोई पदार्थ सिद्ध होता ही नहीं है। नान्य चिंतन विद्यते विमृशताम, विचार करने वालों को। यहां भले ही आप लोग बहुत अलग अलग बैठे हुए हो और अलग अलग ढंग के कपड़े पहन रखे हो, जब तक विचार न करोगे तो तब तक लोग अलग अलग कहेंगे कि इसने इस प्रकार का कपड़ा पहन रखा है, इसने इस प्रकार का कपड़ा पहन रखा है, लोग अलग अलग व्याख्या करेंगे। लेकिन जब विचार किया जाए तो सबके कपड़े एक ही प्रकार का है, किसी के कपड़े में कोई भिन्नता नहीं है, विमृशता, क्योंकि सारे सबके सबके कपड़े में सूत समान रूप में विद्यमान है या कपास समान रूप में विद्यमान है। तब विमृशन यानी विचार करते हैं तो कपास के लेवल में जब आप पहुंचते हो तो ये पता चलता है कि किसी के कपड़ों में भिन्नता है ही नहीं, और भिन्नता तो है ही नहीं, कपास के अलावा तो कुछ है ही नहीं। नाम और रूप यथार्थ तो होता तब न भिन्नता होती, तो नाम रूप तो यथार्थ है ही नहीं। उसी एक यथार्थ कपास में तुम कल्पना करके तुम कुछ भी कर लो, धोती कर लो, पैंट कहो, पजामा कहो, कुर्ता कहो, टी शर्ट कहो, साड़ी कहो, ब्लाउज कहो, कुछ भी कहो, चाहे सब एक ही कपास में ही सारे भाव की कल्पना है। कपास के अलावा और भिन्न सत्ता किसी की न होने पर ये कहते हैं कि जब विचार करता हूं तो परमात्मा की सत्ता के अलावा जगत में कोई भिन्न वस्तु मुझे प्रतीत ही नहीं होता है। कल हमने संकेत किया था, पुष्पदंताचार्य जी ने भी शिवमहिम स्तोत्र में संकेत कर दिया है इसी बात को। भूरम भांस नलो नीलो अम्बर महर नाथो हिमांशु पुमान इत्याभाति चरा चरात्मक इदम यस्यैव मूर्ति अष्टकम्। क्योंकि यूं तो सभी पदार्थ परमात्मा के अभिव्यक्ति या परमात्मा के अनुभूति का आलम्बन है। दो चीज ध्यान रखना, नाम रूप परमात्मा के आलम्बन है, क्योंकि अनाम का जो अभिव्यक्ति है नाम के माध्यम से होता है, अरूप की अभिव्यक्ति रूप के माध्यम से ही होता है, इसलिए आलम्बन कहा गया है, क्योंकि अरूप रूप में माने रूपवान में प्रकट होता है, इसलिए इनको समस्त रूपवान को क्या कहा, आलम्बन का, परमात्मा का आलम्बन है ये। क्यों तो सभी परमात्मा के ही रूप होने के कारण सभी में परमात्मा भाव विद्यमान है, लेकिन सर्वसाधारण को सभी में भगवान शिव यानी परमात्मा भाव सर्वसाधारण को नहीं बनता है। सामान्य चीज, सामान्य उदाहरण लो, थोड़ा सा हीन उपमा देना चाह रहा हूं। आपके सामने जब भोजन की थाली आती है, अलग से भात होता है, रोटी होती है, सब्जी होता है, आम रस होता है, श्रीखंड होता है, पूरी होती है, है? अलग अलग चटनी, सब्जी, अनेक प्रकार के भोजन जब सज कर आता है तो कोई भी पूछेगा कि ये क्या है, थाल में इस तरह सजाया हुआ है, तो बड़े प्रेम से कहता है कि ये तो भोजन है, ये भोजन है। और वहीं पर उस भोजन के पश्चात की जो विष्ठा है उसको रखा जाए तो कह ये क्या है, छी 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 छी, जबकि उस विष्ठा में भोजनत्व का बाद नहीं हुआ है। बात समझ गया? वो जो विष्ठा है, वो मल है, उसमें भोजनत्व का बाद नहीं हुआ है, भोजनत्ता यथावत विद्यमान है। भोजन अभोजन कब होगा ये तो सब तुम्हारी कल्पना है। तुमको जो इच्छा अच्छा लगा उसको भोजन कह दिया, तुमको जो अच्छा नहीं लगा वो अभोजन कह दिया। भोजन तो भोजन है, यदि उसमें भोजनत्व तो नष्ट हो गया होता तो किसी भी कुत्ते और सुअर सुअर भूंड बोलते हैं गुजरात में, है शुकर, पता नहीं उसको शुकर क्यों कहा, करता तो सब कु कर ही है, सु तो कुछ ही नहीं करता, इसलिए चलते समय सु सु करता है, इसलिए शायद उसको सु कर कहा होगा। हाँ, सु सु करोती थी सु कर, सु कर शब्द तो अच्छा करने वालों को भी सु कर कहा जाता है, सुस्तुम करोती थी सु कर, और सुस्त तो कुछ भी नहीं करता है, जिधर जाएगा उधर ही गंदगी। आज तो सारे विश्व में तहलका मचा रखा है स्वाइन फ्लू, है ना, स्वाइन फ्लू उसी के तो सुकर उसी के वंशज है ना, ये सब विज्ञान तो ये कह रहा है, वहीं से निकले हैं, उसी से पैदा हुए, उसी के संतति परमाणु है ये जीव, मनुष्यों को सताने के लिए व्याप्त हुआ हुआ मार डाल रहा है, तो उसको क्या सुकर कहेंगे। उसके शरीर से निकलने वाले जीवाणु मनुष्य के लाइफ को एक्सटेंशन कर दे तो सुकर है, वो तो जीवन को ही समाप्त कर दे मनुष्यों को, तो क्या सुकर है उसको, तो इस अर्थ में उसको सुकर कहा होगा कि सु सु करता है। और शायद सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले उसने सु सु किया था, क्योंकि वराह अवतार लेकर उस परमात्मा ने उसी को ही आलम्बन करके वराह अवतार लेकर गायब हुई हुई रसातल में गई हुई पृथ्वी को खोज कर निकाला है, क्योंकि पृथ्वी गंधवती है और गंधवती पृथ्वी को ग्रहण करने की क्षमता घ्राण इंद्रिय में है, इसीलिए सुगर जो है सुकर जो है घ्राण से सु सु करता हुआ पृथ्वी को खोजता है।